ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंध के 24वें अध्याय के 51 नंबर वर्ष से डिस्कस करेंगे। जनो जनस्यादिशते असतिं गतिं दुरतयं तमः तौन्दोव्ययं ज्ञानम् अमोघमज्ञः प्रपद्यते येन जनो निजं पदम् जनो जनस्यादिशते असतिं गतिम् यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमं तव्ययं ज्ञानम् अमोघमञ्जसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदम् जनो जनस्यादिशते असतिं गतिम् यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमं तव्ययं ज्ञानम् अमोघमञ्जसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदम् जनः व्यक्ति जो प्रमाणिक गुरु नहीं है, साधारण मनुष्य। जनस्य उस साधारण व्यक्ति का जिसे जीवन का लक्ष्य ज्ञात नहीं है, आदिशते आदेश देता है, असतिम नश्वर भौतिक, गतिम जीवन लक्ष्य, यया ऐसे ज्ञान से प्रपद्येत शरण में जाता है, दुरत्ययम दुर्लभ, तम अज्ञान, तम तुम तू लेकिन, अव्ययम जो विनष्ट न किया जा सके, ज्ञानम ज्ञान, अमोघम बिना कलमश के, अंजसा तुरंत, प्रपद्यते प्राप्त करता है, येन ऐसे ज्ञान से जनः व्यक्ति, निजम अपना, पदम मूल स्थान। अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस से भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद। तथा कथित भौतिकतावादी गुरु अपने भौतिकतावादी शिष्यों को आर्थिक विकास एवं इंद्र तृप्ति के विषय में उपदेश देता है और ऐसे उपदेशों से मूर्ख शिष्य अज्ञान के संसार में पड़े रहते हैं, किंतु आप शाश्वत ज्ञान प्रदान करने वाले हैं और बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा ज्ञान प्राप्त करके तुरंत ही अपनी मूल वैधानिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य, तथा कथित गुरु अपने शिष्यों को भौतिक लाभ की शिक्षा देते हैं। कुछ गुरु उपदेश देते हैं कि ऐसे ध्यान किया जाए जिससे उसकी बुद्धि शरीर की इंद्र तृप्ति के योग्य बनाए रखने के लिए बढ़े। दूसरे प्रकार के गुरु उपदेश देते हैं कि काम ही जीवन का चरम लक्ष्य है, अतः शक्ति भर संभोग करना चाहिए। ये उपदेश मूर्ख गुरुओं के हैं। दूसरे शब्दों में, मूर्ख गुरु के उपदेशों के कारण मनुष्य भौतिक संसार में हमेशा के लिए पड़ा रहता है और इसके कष्ट सहता रहता है, किंतु यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति भगवान से आदेश ग्रहण करता है, जैसे कि भगवद गीता में या कपिल देव के सांख्य दर्शन को में बताया गया है, तो उसे शीघ्र ही मुक्ति मिल सकती है और वह आध्यात्मिक जीवन के मूल पद पर स्थित हो सकता है। निजम पदम शब्द सार्थक है। भगवान का अंश होने के कारण जीव को वैकुंठ लोक में स्थान पाने का जन्मसिद्ध अधिकार है, जहाँ किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान के आदेशों का पालन करे। तब भगवद गीता के इस कथन के अनुसार इस शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य भगवत धाम वापस जाएगा। तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम यति स्वर्जुन। भगवान अपने मूल स्वरूप में वैकुंठ में रहते हैं और भगवान के आदेशों का पालन करने वाले भक्त उनके पास चला जाता है। माँ मेती आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में ऐसे भक्त भगवान के पास लौट जाते हैं जहाँ वह उनके साथ खेलता तथा नाचता है। यही जीवन का चरम लक्ष्य है। तो भगवतों में कुछ बोलने से पहले मैं सारे भक्तों का आशीर्वाद याचना करूँगा, विशेषकर जितने वरिष्ठ भक्त हैं, ताकि भगवतों पे इस वर्ष पे कुछ बोला जा सके जिससे कि अपना शुद्धिकरण और भगवान और भगवान के भक्तों का गुणगान किया जा सके। तो जो अभी सेक्शन चल रहा है इसके चैप्टर का नाम है भगवान का मत्स्य अवतार। और मत्स्य अवतार में भगवान ये इसका अगर आप में से जो नियमित रूप से आते होंगे भक्त उनको इसका आइडिया होगा कि भगवान के दो अवतारों के बारे में बताया गया। एक तो पहला आता है स्वयंभू मनु, जो स्वयंभू मनु के समय भगवान ने अवतार लिया, जब सृष्टि के पूरे 14 मनोत्तरों का समापन होता है उसके बाद जब भगवान पहले मनु के रूप में मत्स्य अवतार के रूप में आते हैं जो वेदों को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद ये जो सेक्शन है ये जो अभी चल रहा है इसमें मत्स्य अवतार आए हुए हैं, ये राजा सत्यव्रत, राजा सत्यव्रत के लिए आए हुए हैं। बेसिकली इसको हिजोरेंस प्रधान सरस्वती महाराज जब क्लास दे रहे थे तो उन्होंने श्रीधर गोस्वामी श्रीधर स्वामी जी के एक टीका से बताया था कि ये जो अवतार है मत्स्य अवतार ये चक्षुष मनोन्तर में आए हैं। तो वैसे चक्षुष मनोन्तर में प्रलय आती नहीं है, बट भगवान ने खाली एक लीला मात्र से ये चीज़ की थी जिसमें कि वो इस चीज़ को एस्टैब्लिश करना चाहते थे कि भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों के कॉज के लिए, भक्तों ने एक्चुअली राजा सत्यव्रत ने भगवान की बहुत ज़्यादा तपस्या की थी और जिसके कारण भगवान उनको एक अपना पास टाइम मैनिफेस्ट करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे, उस कारण से चक्षुष मनोन्तर में भगवान अवतरित हुए। इसके बाद जो नेक्स्ट मनोन्तर जो अभी चल रहा है व्यवस्थन मनोन्तर, इसमें राजा सत्यव्रत मनु होंगे। और जो ये सेक्शन अभी चल रहा है खासकर कि ये प्रार्थनाएं चल रही हैं राजा सत्यव्रत की, और इन प्रार्थनाओं में कॉन्स्टेंटली राजा सत्यव्रत भगवान को याचना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनको एक भगवान उनका एक आध्यात्मिक गुरु का स्थान लें, आध्यात्मिक गुरु का स्थान लें और उनको एक मार्गदर्शन दें। इसी चीज़ पे हिजुलनेस भक्ति आशय वैष्णव महाराज ने दो क्लासेस ली थी सैटरडे और संडे को, तो इसमें बेसिकली बताया था एक चीटिंग गुरुज के ऊपर कि कैसे एक गुरु जिसको कि खुद दिशा नहीं है, खुद उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, विजन नहीं है, विजन नहीं है बेसिकली, तो वो व्यक्ति बिल्कुल भी अपने जो जन है बेसिकली जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उनको सही डायरेक्शन नहीं दे सकता। उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के वर्ष में भी ये चीज़ एम्फसाइज की जा रही है कि तथाकथित भौतिकतावादी गुरु अपने भौतिकतावादी शिष्यों को आर्थिक विकास एवं इंद्र तृप्ति के विषय में उपदेश देता है और ऐसे उपदेशों से मूर्ख शिष्य अज्ञान के संसार में पड़े रहते हैं, किंतु आप शाश्वत ज्ञान प्रदान करने वाले हैं और बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा ज्ञान प्राप्त करके तुरंत ही अपनी मूल वैधानिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। सो इसमें आज जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बेसिकली दो चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, एक डिस्कशन होगा चीटिंग गुरुस कि भौतिकतावादी गुरु कौन होते हैं, उनके क्या प्रकार होते हैं, और दूसरा भगवान प्रभा जी इस पर्पट में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कोट कर रहे हैं, निजम पदम जो भगवान के चरण कमलों की शरण को ग्रहण करना। सो ये एक पास्ट टाइम है श्री प्रभा जी का, जैसे कहते हैं कि जितने भी गुरु होते हैं संसार में वो कहीं ना कहीं इमीडिएट कॉजेस को एड्रेस करते हैं, इमीडिएट कॉजेस के ऊपर बोलते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की एक बात है कि प्रभुपाद जी ने पूरा अल्टीमेट गोल दिया है लाइफ का, अल्टीमेट गोल बताया क्या है और क्या हमें अचीव करना चाहिए। तो ऐसे ही 1976 में श्रील प्रभुपाद जी मायापुर में थे और हरीश रॉय उस चीज़ को अपने ट्रांसलेट डायलॉग में मेंशन करते हैं कि एक बार एक मायावादी गुरु थे, बेसिकली वो माता जी थी योगिनी माँ उनका नाम था, तो वो अपने दो शिष्यों के साथ आई प्रभुपाद जी के दर्शन के लिए, और जब प्रभुपाद जी के दर्शन के लिए आए तो उनके दो शिष्य माता जी दोनों आए बैठे प्रभुपाद के पास और प्रभुपाद से बोला कि प्रभुपाद हम एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उस रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे धर्म गुरुओं को बुला रहे हैं, धर्म नेताओं को बुला रहे हैं, तो आपको भी इसमें इन्वाइट करना चाहेंगे। तो प्रभुपाद जी ने पूछा ये कॉन्फ्रेंस है कहाँ पे, कैसे करने वाले हैं आप लोग आए कहाँ से, सारा डिटेल चेक किया तो बताया कि हम कलकत्ता में हमारा हेड ऑफिस है, एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट हमारा एक फ्लैट है और वहाँ पे हमारा हेड ऑफिस चलता है और ये हम कलकत्ता में कहीं सीरीज कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आप सादर आमंत्रित हैं इसमें। तो प्रभा जी ने तो थोड़ा देर और बात किया तो उन्होंने पूरा उनका एक तरीके से ब्यौरा निकाल ही लिया कि वो क्या बेसिकली उनके सिद्धांत क्या, उनकी फिलॉसफी क्या, उनकी प्रैक्टिस क्या है। तो फिर प्रभा जी ने उनको एक बात बोली कि बोली देखिए इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में क्या फ़ायदा, इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में क्या फ़ायदा, जैसे कि एक टॉयलेट है उस टॉयलेट में आप जितना भी सेंट छिड़कें और टॉयलेट टॉयलेट ही रहेगा। तो टॉयलेट में जो सेंट है डालने से टॉयलेट का कंडीशन नहीं बदल सकता है। तो ये एकदम स्ट्राइक करेगा उनको, ये क्या बोल दिया उन्होंने। तुम्हारी मतलब कॉन्फ्रेंस का टाइटल था पीस हारमोनी एंड प्रॉस्पेरिटी, इस पर करना था उनको पीस कॉन्फ्रेंस एक। तो उनको एक शॉक लगा, लेकिन एक सदाचार का पालन करते हुए उनके जो शिष्य थे उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो अपने दांत पीसते रह गए। उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने बोला देखिए बात समझने की कोशिश करिए आप। फिर दूसरी बार बोला उनको कि एक शौचालय जो होता है वो शौचालय में जितना भी आप सेंट छिड़की है वो शौचालय की अवस्था नहीं बदल सकती। तो इसीलिए आप जितना पीस हारमोनी प्रॉस्पेरिटी और जितनी बड़ी बड़ी बातें करिए उससे कुछ नहीं होने वाला संसार का। संसार का एक ही लक्ष्य है कि हम भगवान के निजम पदम भगवान के धाम को वापस जाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। तो इस तरह एक तरह से बहुत एम्बैरेसिंग हुआ उनके लिए, बट स्टिल वो लोग वापस अपने जो भी था चले गए। फिर उन्होंने पूछा हरीश हरी प्रभु ने कि प्रभुपाल ये क्या नाम है जिस तरह से ये लोग बता रहे थे चीज़ें कि हमें अटेंड नहीं करना चाहिए था। तो प्रभुपाल ने थोड़ा सा उनका खंडन किया, बोला नहीं ये सब ऐसी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं लेकिन खाली अपनी मायावाद दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए। पर प्रभुपाद ने एक बहुत मजेदार बात बोली उनसे, बोला कि देखो इनके पास यौगिक शक्ति है, उस पूरी यौगिक शक्ति से इन्होंने एक अपार्टमेंट बना रखा है कलकत्ता में, लेकिन हमारे पास कोई यौगिक शक्ति नहीं है, हम खाली भगवान पर निर्भर करते हैं और हमारे पास पूरे संसार में बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े कोठियां हैं। तो क्या बेहतर है यौगिक शक्तियां प्राप्त करना कि ये भगवान के शरण प्राप्त करना, विच इज बेटर। इसी के संदर्भ में हिजुलनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज भी एक स्टोरी बता रहे थे संडे को, एक योगी गुरु की जो बहुत वर्षों तक तपस्या करने के बाद पानी में वॉक करना सीखा था। तो पानी में वॉक करना तो बहुत लंबी स्टोरी थी, बट मैं उसका एसेंस खाली बताऊंगा आपको कि फाइनली प्रभुपाद ने यही बोला कि उसने पूरा जीवन लगा लिया खाली 2 रुपए के कार्य करने के लिए, पूरा जीवन लगाया खाली 2 रुपए के कार्य के लिए। तो दैट्स अ वेस्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन का पूर्ण रूप से बर्बादी एक तरीके से। सो इन रिलेशन विद चीटिंग गुरु हमने एक वर्स डिस्कस करें श्रीमद् भागवतम के 7th canto के 15th अध्याय के 12वें वर्स में आता है ये। इसमें बेसिकली बहुत डिटेल में बताया गया है कि किस किस प्रकार के अलग अलग अधर्म होते हैं। अगर इसमें ध्यान दें विधर्म परधर्म अभाषोपधर्म छल अधर्म शाखा पंचेम धर्म अज्ञोपधर्म धर्म तजेत। सो इसमें बेसिकली 5 जो आप लाइन देखना जो हमने रेड में लिखी है, रेड स्याही में लाल स्याही में। सो ये 5 प्रकार के पंचम धर्म अधर्म बताए गए हैं जिनको एक धर्मज्ञ बेसिकली जो धर्म जानता है व्यक्ति उसको इसका त्याग करना चाहिए। जैसे विधर्म परधर्म आभास उपमा और छल, ये 5 प्रकार के अधर्म श्रीमद् भागवतम में बताए गए हैं 7th skand के 15वें अध्याय के 12वें वर्स में। तो इसी पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आप फर्स्ट वन विधर्म अगर आप देखें तो विधर्म जो आता है पहले इसका अर्थ ये बताया जाता है कि लाइक बैरियर टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रोसेस वही होता है, देखने से प्रोसेस वही फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें ये बैरियर होता है आपकी कृष्ण भावना होगी तो कभी जन्म नहीं दे सकता। तो इसमें मुख्यतः कुछ ऐसे कैटेगरीज के लोग आते हैं जैसे प्रोफेशनल रिसाइटर्स मतलब जो जैसे भागवत सप्ताह होती है, भागवत सप्ताह वगैरह जो करते हैं, मतलब धन ले के भागवत बोलना, और रिचुअलिस्टिक चैंटर्स बेसिकली जो मंत्र कर्मकांडी ब्राह्मण टाइप होते हैं। तो बेसिकली इसमें एक स्टोरी भी आती है कि ये जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स होते हैं वो कहता है भागवतम का और धर्म का इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली धर्म के अगेंस्ट, इसीलिए उसको विधर्म बोला गया है। अगेंस्ट कैसे, क्योंकि भागवतम अगर आप देखिए बोलने की जो क्वालिफिकेशन है वो भागवतम स्वयं बताती है। सुखदेव गोस्वामी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। परीक्षित महाराज एक आइडियल हियरर और सुखदेव गोस्वामी एक आइडियल स्पीकर, लेकिन प्रोफेशनल रिसाइटर्स पूरा अलग ही इनका कारोबार होता है। क्या है कि पैसे लेके बड़े बड़े पैसे लेके वो बड़े बड़े भागवत सप्ताह कराना, जिसमें कि सुनने वालों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। पहला तो सुनने वाले खाली अपने पुण्य अर्जित करने आते हैं कि ठीक है भागवत सुनना चाहिए उससे हमारा पुण्य बढ़ता है तो भागवतम सुनने चलते हैं, और जो बोलने वाले हैं उनको भी कोई भागवतम से लेना देना नहीं है, वो खाली भागवतम इसलिए बोलते हैं ताकि कुछ पैसे का अच्छा कलेक्शन हो जाए। दूसरा ये हो जाए कि जो हमारे आसपास के और भी भागवत प्रचारक हैं उनके साथ हमारा एक अच्छा कॉम्पिटिशन रहता है, तो स्टेटस सिंबल भी होता है एक वो। बट इसमें अगर आप ध्यान दें परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, तो परीक्षित महाराज किसी भी इस भाव से नहीं आए थे कि उनको भागवतम इस दृष्टि से सुनना है कि जैसे एक स्टोरी में आपको बताता हूँ, एक प्रोफेशनल रिसाइटर थे तो उनकी भागवतम एक हफ्ते की थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा भागवत कथा किया और भागवत कथा करने के बाद उनकी भागवत कथा में पहले दिन से ही एक माता जी आती थी जो कथा में बैठती थी और कथा शुरू होती थी और वो रोना शुरू कर देती थी। तो उनको लगता है मेरे भागवत का प्रभाव इन्हीं पड़ रहा है, खाली इन्हीं के अंदर खाली ये इतने विकार आ रहे हैं। दूसरा दिन भी हुआ सेम चीज़, तीसरा दिन भी हुआ सेम चीज़, चौथे दिन भी सेम चीज़, मतलब ये हो क्या रहा है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही असर कर रही भागवतम। तो सात दिन तक भागवतम चली, फिर सातवें दिन उन्होंने पूछा उन माता जी से कि माता जी आपको ऐसा क्या अनुभूति हो रहा था सातवें दिन में, क्या परीक्षित महाराज की स्टोरी आपको टच की कि आपको ये कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए ये टच किया, ऐसा कौन सा पास्ट टाइम है जो अल्टीमेटली आपको टच किया जब रोने लगी, क्या हुआ? उन्होंने बताया कि एक हफ्ते पहले मेरी बकरी मर गई थी। तो बकरी जब मर गई थी तो मेरे को बड़ा दुख हो रहा था उसके मरने का, लेकिन जब जब मैं आपको देखती थी तो आपकी दाढ़ी मेरे को मेरी बकरी की याद दिलाती थी तो आपकी दाढ़ी मेरे को मेरी बकरी की याद दिलाती थी, इसलिए मैं अपना रोना रोक नहीं पाती थी, तो इसलिए मेरे आंसू निकलते थे, रोती रहती थी, मैं आपको देख देख कर रोती रहती थी, मेरी बकरी मर गई, मेरी बकरी मर गई। तो पॉइंट इज, सुनने वाला भी उसे कोई वो नहीं है इंटेंशन की भागवतम सुन के कोई रिफॉर्मेशन लाना है लाइफ में, और बोलने वाला उसका भी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है लाने का। तो ये एक तरह का विधर्म है बेसिकली, ये मतलब दिखता धर्म है लेकिन ये अगेंस्ट रिलीजियस प्रिंसिपल एक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट वन इज परधर्म। परधर्म का अर्थ है कि उस तरह का रिलीजियस प्रिंसिपल जो कि किसी और के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, किसी और के द्वारा अपने हिसाब से, जिस प्रकार से जैसे कि सहजियाज होते हैं, सहजियाज अपने हिसाब से कॉन्कॉक्टेड रिलीजन बना लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु पे अगर देखें तो बहुत ज़्यादा शास्त्रों में मेंशन नहीं है भगवान के अपीयरेंस को लेकर या भगवान के उसको लेकर, बहुत हिडन वेज में मेंशन है, लेकिन उसी चीज़ को सहजियाज क्या करते हैं, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट कर करके उनको अपने ही निर्णय निकालते हैं। ऐसे एक स्टोरी आती है वृंदावन की, वृंदावन में एक बार एक सहजिया आए टेम्पल में, और टेम्पल में आके जैसे ही गौरताय के दर्शन किए वो एकदम भाव विभोर हो गए और वो जमीन पर गिर के लोट फूट करके रोने लगे और कहने लगे अमार नेताई अमार गौर, अमार नेताई अमार गौर। तो विदेशी भक्त थे वो बड़े कन्फ्यूज हो गए कि ये क्या हो गया, लगता है अष्टात्विक विकार प्रकट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हाथ लगाने से भी डर रहे थे उनको और वो बड़ा लुटपुट किए बड़े थे वृंदावन में। तो तुरंत भक्त भाग के गए प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद प्रभुपाद ऐसा ऐसा हुआ है, एक भक्त हैं आए हुए हैं और जैसे महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी पास टाइम किया था गिर के अष्टात्विक विकार प्रकट किए थे, वो भी वैसे कुछ प्रकट कर रहे हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजन है करें क्या इनके साथ, इनको क्या करें। तो प्रभात ने उनको एक टेस्ट दिया, सहजिया टेस्ट उनको क्या बोला कि इनको आप क्या करना, आप गार्ड को लेके जाना और गार्ड के पास डंडा होगा या लाठी होगी, उसको लगा के खूब इनको मारना, पहले तीन चार डंडे मारना, और तीन चार डंडे मारने के बाद अगर ये आपको रिटर्न बैक करें, आपसे कुछ बदतमीजी करें या आपको जवाब दें या बहस करें कुछ करें, तो इनको तीन चार डंडे और मारना और मार के इनको वृंदावन से टेम्पल से बाहर भेज देना इनको, और इन केस अगर ये रिप्लाई नहीं करते हैं, विनम्रता बनाए रखते हैं, तो उनके चरणों में गिर के माफ़ी मांग लेना कि आपने बहुत बड़ा भ्रष्ट अपराध किया है। तो दैट इज द सहजिया टेस्ट कि विनम्रता लैक करती है, ह्यूमिलिटी नहीं होती, देयर इज नॉट ह्यूमिलिटी प्रिंसिपल। तो भक्तों ने यही किया, गए और गए के लगा के दो तीन डंडे लगाए, उतने में थोड़ा देर तक तो सहा वो, लेकिन कितना देर तक सहा था फिर उसने अपनी गाली गलौज शुरू कर दी, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, फिर भक्तों ने पिटाई करके उसको बाहर ही कर दिया फाइनली। तो दैट इज लाइक वन सहजिया टेस्ट, दैट इज परधर्म। परधर्म बेसिकली सहेजिया, इवन कई कंसेप्ट ऐसे भी आते हैं जो बड़े मंडेन कंसेप्ट होते हैं लाइफ में, जैसे कि नेशनलिज्म का एक बड़ा कंसेप्ट होता है कि देशभक्ति को लेके, तो ये भी कोई शास्त्रिक वर्जन नहीं है, ये भी एक तरह से परधर्म है, लोगों द्वारा बनाया गया है, खास करके शारीरिक चेतना में जो बहुत डीपली एंग्रोस होते हैं उन्हीं के द्वारा। तो नेशनलिज्म ये अपने आप में एक परधर्म आता है। उसी प्रकार से एक वक्त अपने लेक्चर में बता रहे थे कि ये सन 2003-4 की बात है, जब एक सीरीज ऑफ मूवीज आई थी भगत सिंह के ऊपर, तो भगत सिंह के ऊपर बहुत सारी मूवी निकली थी, 8-10 मूवी निकली थी। तो भगत दूसरे एक व्यक्ति को इनवाइट किया कि आप संडे को आइए, संडे को आकर के हमारा संडे फीस अटेंड करिए, काफ़ी अच्छा लेक्चर होता है वहाँ पे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं इस संडे एक्चुअली ना भगत सिंह की पिक्चर रिलीज हो रही है, भगत सिंह की पिक्चर देख के आऊँगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आइए, वहाँ भी हम आपको भगत सिंह दिखाएंगे। तो बोला भगत सिंह वहाँ पे कैसे, क्या आप भी मूवी में भी दिखाएंगे क्या कुछ वहाँ पे? बोला नहीं नहीं भगत सिंह मूवी नहीं दिखाएंगे आपको, आप आइए संडे को, संडे को मंदिर में बहुत भगत होते हैं और जितने भगत होते हैं वो सारे सिंह कर रहे होते हैं, गा रहे होते हैं भगवान के बारे में। तो भगत सिंह आइए, आपको भगत सिंह से मिलवाएंगे। That is something like nationalism. It's like one of the paradharma. Paradharma aata hai. Uske baad abhas. Next one is abhas. Abhas basically wo log the actually purport nahi pad raha tha kyunki iske baad ke do purport jo hai 7.15 aur 12 wala. But iske aage agar refer karna chahe to 13 14 hi pad sakte hain aur detail mein iske upar ki paradharma aur dharma kya hai samay ki kami karan mein isko aage badh raha tha. बट अगर आप रेफर करना चाहें 7.15.12 के आगे 13 और 14 वर्स है जिसमें इन्हीं पांचों को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया श्री प्रभुपाद ने अपने पर्पट्स में. सो द थर्ड वन इज आभास. आभास को डिस्क्राइब करते हैं श्री प्रभुपाद. इट्स प्रिस्क्राइब ड्यूटीज ऑफ वर्ण आश्रम. बेसिकली जो लोग अपने वर्ण आश्रम की जो वो हैं सिद्धांत हैं नियम हैं उनका त्याग कर करके तो कहते क्या हैं बेसिकली उन सिस्टम्स को फॉलो करते हैं रिलीजन को फॉलो करते हैं जो वर्णाश्रम का गोल नहीं है. जैसे कि श्री प्रभुपाद उस पर्पट में बता रहे हैं श्री प्रभुपाद यहाँ विष्णु पुराण से एक वर्स कोट करते हैं. वर्णाश्रम आश्रवतम पुरुषेण परम पुमान विष्णु आराध्यते पंत नान्य तत्व तत्तोषण कारणम. ये एक्चुअली वर्णाश्रम का लक्ष्य है. वर्णाश्रम का लक्ष्य है विष्णु की आराधना. विष्णु की आराधना लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं विष्णु की आराधना नहीं करते हैं. वर्णाश्रम में होते हुए भी वो वर्णाश्रम के कितने प्रिंसिपल्स को ट्रांसग्रेस करते हैं. श्री प्रभुपाद हमेशा क्या करते थे कि जैसे कई ऐसे संगठन हैं जो कि आपके बाह्य रूप से वर्णाश्रम तो होगा सन्यासी वेश में होंगे लेकिन स्मोक करते होंगे और हो सकता है मांस भक्षण भी करते हों तो ऐसे आपको संप्रदाय मिलेंगे जो वो करते हैं. इसकी इसका डिस्क्रिप्शन आपको कई सेक्शन में आएगा. चैतन्य भागवत में एक स्टोरी आती है वो श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु की आती है. जो नित्यानंद प्रभु एक सन्यासी के घर जाते हैं सन्यासी क्या देखते हैं कि सन्यासी के घर में उनकी स्त्री उनके साथ रहती थी. थे सन्यासी बाह्य रूप से लेकिन उनकी स्त्री जो थी उनके साथ रहती थी और इवन वो कुछ और भी ऐसी ऐसी गलत चीज़ें करते थे जिसके कारण वो वर्णाश्रम के जो धर्म सन्यास के जो धर्म है उसका पालन नहीं करते थे. पहला तो बाह्य रूप से भी नहीं पालन करते थे और सेकंड जो गोल है वर्णाश्रम का कि विष्णु की आराधना वो भी उसको पूर्ण रूप से फॉलो नहीं करते थे. सो दिस इज आभास. इसको आभास कहते हैं. इसके प्रकार से इसमें जैसे कि हाँ आभास आभास मात्र. तो इसमें सन्यास में इस तरह से बताया जाता था कि सन्यास का जो रियल गोल है कि अनाश्रित कर्म फलम त्यागम कि अपने कर्म फल को त्यागते हुए एक्चुअली जो भगवान की सेवा करते हैं वो एक्चुअल सन्यास है. 18 अध्याय में बताया गया भगवत गीता के. तो ऐसे श्री प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया और उसने बताया कि जो मेरे गुरु हैं वो शॉकिंग गुरु हैं. शॉकिंग गुरु का अर्थ है कि वो जैसे ही मेरे को टच करते हैं मेरे अंदर बिजली की तरंगे गुजरने लगती हैं. तो प्रभुपाद ने बोला इसके लिए गुरु की क्या जरूरत है ये इलेक्ट्रिक स्विच है ही यहाँ पे तो स्विच में हाथ डालो अपने आप शॉक लगेगा तो उसके लिए गुरु बनाने की क्या जरूरत है. इट्स नॉट अ पर्पस ऑफ अ गुरु. उसी प्रकार से एक व्यक्ति था वो कहता था कि मुझे रात में नींद नहीं आती. तो प्रभुपाद ने पूछा क्यों नहीं नींद आती आपको कारण क्या है नींद ना आने का. तो उसने बताया नींद नहीं आने का कारण मेरी पांच पांच फैक्ट्रियां हैं. पांच पांच फैक्ट्री होने के कारण मेरी रात में नींद नहीं आती. बहुत टेंशन होती है बहुत चिंताएं रहती हैं तो क्या करूँ इसके लिए. प्रभुपाद ने बोला पांचों फैक्ट्री मेरे को दे दो तो सारी चिंता खत्म चिंता के साथ नींद भी आएगी बहुत आराम से नींद आएगी. तो डर गया वो व्यक्ति बोला ये क्या बोल दिया प्रभुपाद ने कि पूरा फैक्ट्री दे दें इनको. फिर बोला नहीं नहीं ठीक है मैं किसी तरह मैनेज कर लूंगा दवाई वाई लेके गोलियां वोलियाँ डॉक्टर लेके कुछ कुछ मैनेज कर लूंगा ये रहने दीजिए. तो उसके मन में एक डाउट आया कि ये कैसे सन्यासी हैं कि मतलब पैसे के लिए इतने लोभी. तो उसने अगले दिन आया. अगले दिन आके उसने एक फोटो लेके आया और फोटो में क्या दिखाया एक सन्यासी एक मायावादी सन्यासी थे और उनके आगे एक पैसे का एक बोरी रखी हुई थी बंडल रखे हुए थे और उनकी फोटो ऐसी आई थी इस तरह से कि मैं पैसा स्वीकार नहीं करता बिल्कुल. तो प्रभुपाद ने बोला कि अरे बड़ा मूर्ख है ऐसी ऐसी फोटो खिंचानी चाहिए मेरे साथ फोटो खिंचाओ मैं पूरी बोरी को गले लगाते फोटो खिंचाऊंगा. तो उसको कन्फ्यूजन हो गया बोरी को गले लगाते फोटो कैसे सन्यासी है. तो उनको लगा कि कहीं ये उस आभास वाले कैटेगरी में तो नहीं गिर रहे कहीं. फिर प्रभुपाद ने बताया एक्चुअली सन्यास का अर्थ है युक्त वैराग्य कि आप हर चीज को भगवान की सेवा में लगाओ इसीलिए अपनी फोटो खिंचाएंगे गले लगाते हुए इस बोरी को ताकि इस पूरा का पूरा धन इस्तेमाल करें भगवान की सेवा में. सो दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ सन्यास ट्रांसग्रेसर बेसिकली आभास. उसके बाद नेक्स्ट आता है उपमा. उपमा का एक और इसका एलैबोरेट है उपधर्म. उपधर्म उपधर्म इज लाइक पीपल आउट ऑफ फॉल्स प्राइड एक झूठे अहंकार वश वेदों के दिए हुए वर्जन को वो करते हैं अपोज करते हैं अपोज द वैदिक वर्जन. इसमें बेसिकली वैसे लोग आते हैं जैसे बोगस इनकार्नेशंस हुए और बोगस इनकार्नेशन जितने आते हैं, प्रभुपाद जी के टाइम पे भी होता था, उनके डिसाइपल्स बताया करते थे कि ये जो इंडिया है, इंडिया से आए दिन नए नए भगवान आ रहे हैं, तो प्रभुपाद कहते थे इंडिया इज अ गॉड एक्सपोर्टिंग कंट्री, कि वहाँ से कुछ एक्सपोर्ट हो चाहे ना हो, भगवान जरूर एक्सपोर्ट होते हैं वहाँ से, आए दिन नए नए भगवान आ रहे होते हैं। और कई ऐसे बोगस इनकार्नेशन मिलेंगे आपको जो अपने आप को भगवान बताएंगे, जो भगवान की स्थिति में अपने आप को रखते हैं, बेसिकली दिस बिकॉज ऑफ जस्ट फॉल्स प्राइड, झूठे अहंकार वश, और वेदों के जो वर्जन होते हैं उसके अगेंस्ट होते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है आपका, देखिए अगर आप कृष्ण बुक में एक स्टोरी आती है पौंडरक की, राजा पौंडरक की, पौंडरक खुद बनना चाहता था कृष्ण, अपने को बताता था कि मैं कृष्ण हूँ और तुम कृष्ण नहीं हो, तो झूठे कृष्ण तुम बन के बैठे हो, तुम ये अपना झूठापन त्याग दो और जो दो चीज़ें तुम अपने पास दे रखी हो ना वो मेरे को दे दो, ताकि मैं अपने आप को संपूर्ण कर सकूं। एक शिवत्स का जो साइन होता है भगवान का वो, और एक सुदर्शन। तो भगवान ने बोला ठीक है मैं दोनों ही देता हूँ, पहले सुदर्शन देता हूँ तुमको, सुदर्शन देने के बाद तुम्हारा गर्दन अलग हो जाएगा सर से, तब समझोगे भगवान मैं हूँ कि आप कौन है। उसी प्रकार से भगवान ने अपनी इस भगवत्ता को अर्जुन को यूनिवर्सल फॉर्म में भी दिखाया था, कि यूनिवर्सल फॉर्म कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं प्रेजेंट कर सकता, वो भगवान थे जिन्होंने प्रेजेंट किया। सो दिस इज उपधर्मा, और दैट इज उपमा, और लास्ट वन है छल। छल बेसिकली वो लोग होते हैं जो वर्ड जगलरी करते हैं, बेसिकली शास्त्रों की ही बातों को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करना, तोड़ मरोड़ के। इसमें मुख्यतः आपके बहुत सारे मायावादी सन्यासी जाते हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि भगवद गीता के ही वर्जन को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके बताना, जैसे गीता क्या है, भगवद्गीता का संदेश क्या है वो बताया गया है पांडवों के लिए, पांडव कौन है, पांडव पांच इंद्रियां हैं, फिर कुरुक्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है, देह है, इस तरह से मिस इंटरप्रिटेशन। एक मिस इंटरप्रिटेशन बता देते, एक वर्स था दिमाग से, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट, तो एक वर्स इसमें आता है, इसमें और भी इंटरप्रिटेशन आते हैं। इवन आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी ने जो 1950s में जो प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने भी कमेंट्री दी थी अपनी, बहुत लंबी चौड़ी कमेंट्री होंगी भगवद्गीता पे, तो उन्होंने भी अच्छा खासा इसमें इंटरप्रिटेशंस डाल रखा है। एक्चुअली बताया कि यू डोंट हैव टू सरेंडर ऑन टू द पर्सन कृष्णा, यू हैव टू सरेंडर टू द कृष्णा हु इज विद इन द पर्सन कृष्णा। आपको ऐसे व्यक्ति को सरेंडर करना है जो इस कृष्ण जो गीता बोल रहा है ना उसके अंदर है, उसके अंदर, अब क्या अंदर है पता नहीं, लेकिन उसके अंदर जो कृष्ण है उसको आपको सरेंडर करना है। तो दिस इज लाइक द मिस इंटरप्रिटेशंस, बेसिकली वर्ड जगलरी जो पांच आती है। तो ये चीज मेंशन करते हैं कि अधर्म शाखा पंचेम धर्म धर्मज्ञो धर्म व तेजेत, बेसिकली रिजेक्ट, इनको रिजेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन लोगों को जो धर्म को जानते हैं, धर्मज्ञ हैं, क्योंकि अगर आप इसको स्टडी करें धर्म का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, सर्वधर्मां परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, यही धर्म की परिभाषा है कि सर्व प्रकार के धर्मों को त्याग दीजिए और उसको स्वीकार करिए जो भगवान ने बताया, भगवान को स्वीकार करिए, भगवान को बेसिकली स्वीकार करना, सर्वधर्मां परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज हम तम सर पापे में मोक्ष शाही मा सुचा, ये अल्टीमेट कंक्लूजन है, ये धर्म है। एक्चुअली धर्म की परिभाषा अगर आप कहें तो ये है, और श्रील प्रभुपाद इसी चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं अपने इस तात्पर्य में भी। निजम पदम, निजम पदम का अर्थ है कि भगवान के चरण कमलों की शरण को ग्रहण करना, क्योंकि जब तक भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं की है तब तक इस भव सागर को पार कर पाना बहुत मुश्किल है, भव सागर को पार कर पाना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो भव सागर भी नहीं समझ में आता, भव सागर है क्या, व्हाट इज दिस भव सागर। तो एक बार ऐसे एक भक्त से चर्चा हो रही थी, तो ही स्विमर है, तैराक है, तो बता रहे थे कि जब तैराकी करते हैं तो कई बार तैराकी करते करते खासकर नदी में अगर तैराकी कर रहे हैं तो नदी का जो पानी का प्रवाह होता है इतना तेज होता है तो आपको पता नहीं चलता कैसे बहते चले जा रहे हो। और खास करके अगर आप डूब रहे हो उसमें तो बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि डूब रहे हो, जब तक आप एकदम हेल्पलेस हो जाते हो, पता चल गया आप तो बिल्कुल बच नहीं सकते। तो दैट इज एक पानी का प्रवाह, जल प्रवाह। उसी प्रकार से जल प्रवाह तो वो बता रहे थे कि इसीलिए अगर थोड़ा सोचे भी मृत्यु के ऊपर, और खास करके वैसी मृत्यु जो जल के कारण होती है, तो लगता है कितना तड़प तड़प के मरना पड़ता है, उसमें काफी समय तक तड़प तड़प के मरना पड़ता है। तो हमसे ये बोला कि एक चीज तो है, चलो ये तो हम परसीव कर ले रहे हैं, लेकिन एक और प्रवाह है, भव प्रवाह, उसको देख पाना बहुत मुश्किल है। भव प्रवाह कैसे, वो भव प्रवाह एक बद्ध जीवात्मा को इस संसार में चक्कर में डाला हुआ है। हाँ, अलग अलग, जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना में बोलती है, भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्षनाश स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जन, आगे क्या था, अचिरेण तावकम तवे पश्यन्ति अचिरेण तावकम भव प्रवाह हो परमम पदाम्बुजम, ये बताती हैं भव प्रवाह, वहाँ पे एक टाइम आता है भव प्रवाह, इतना स्ट्रांग भव प्रवाह है, क्योंकि इस चीज़ को परसीव कर पाना, परसेप्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल है। अगर आप भगवद्गीता के 13वें अध्याय में देखें वर्स नंबर 8 से 12 तक, तो वहाँ पे इस चीज़ में बताया गया था 18 आइटम्स ऑफ नॉलेज, इसी चीज़ को प्रभाव व्याख्या कर रहे हैं अपने ईशोपनिषद के 9वें मंत्र के में परपट में कि 18 आइटम्स नॉलेज क्या है। उसमें एक मेंशन कर रहे हैं द परसेप्शन ऑफ बर्थ ओल्ड एज डिजीज एंड डेथ इज एक्चुअली नॉलेज, ये ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि आप इस चीज़ को परसीव कर पा रहे हैं जीवन में कि वाकई ही जीवन में ये चार चीज़ें समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। क्योंकि जब तक इसका दर्शन नहीं होगा आत्म जिज्ञासा का जो शुरुआत है ना वो हो नहीं सकती कभी, जो सेल्फ इंक्वायरी कभी स्टार्ट नहीं होगी। क्योंकि जब तक यहाँ पे आपको एक सेटिस्फैक्शन महसूस होगा, एक कंफर्टेबल लाइफ महसूस होगी, टिल दैट टाइम दैट एस्पेक्ट ऑफ इंक्वायरी इज नॉट देयर, वो इंक्वायरी का जो एलिमेंट है वो कभी जागृत नहीं हो पाता है। इवन एक बार ऐसे भक्त पूछ रहे थे कि इस संसार में दुख है, तो मैंने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया, बोला बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसी को डिटेक्ट कर पा रहे हैं संसार में दुख है तो यू आर आइडियल कैंडिडेट फॉर रिसीविंग द मैसेज ऑफ भागवतम। क्योंकि जब तक दुख नहीं समझ में आएगा तब तक भगवान के चरणों की कोई शेल्टर नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ शेल्टर। लेकिन कई बार जब भव प्रवाह के बारे में बताते हैं तो ये सही परसीवेबल नहीं होता है कि क्या है परसेप्शन, क्या है भव प्रवाह, है क्या ऑल टुगेदर। तो इसी चीज़ को कुंती महारानी एक और प्रार्थना में अपने बताती हैं परीक्षित इस भागवतम के वर्ष में, बहुत ही अच्छा वर्ष बताती हैं, विशान महाअग्नि पुरुषाद दर्शनाद, अपने दुखों के बारे में बताती हैं कि कितने सारे दुख हमारे ऊपर आए थे। विशान महाअग्नि पुरुषाद दर्शनाद, विष एक पॉइजनस केक उनको दिया गया था एज अ गिफ्ट खाने के लिए, और विशान पॉइजन गिफ्ट एज अ गिफ्ट टू ईट, महाअग्नि लाजग्रह में भेजा गया था जहाँ एक हल्की सी माचिस उसको जला के खत्म कर देती, महाअग्नि। पुरुषाद दर्शनाथ, जब वहां से निकले करके तो उसके बाद क्या दर्शन किया उन्होंने, जंगल में गए, जंगल में उनकी फाइट हुई, मैन ईटर राक्षसों से लड़ाई हुई उनकी। विशाल महाग्नि पुरुषाद दर्शनाथ असत्य सभ्या वनवास कृच्छ्रत, असत्य सभ्या, आज भी देखिए आप कि जो द्रौपदी के साथ इंसिडेंट हुआ उस टाइम पे, द्वापर के टाइम में जहाँ पे सिविलाइजेशन इतना कल्चर्ड था, इतना वेल बिहेव्ड था, उस समय ऐसा अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो बहुत शॉकिंग था, असत्य सभ्या। आज की डेट में भी आप सोच नहीं सकते कि पार्लियामेंट हाउस में किसी एमपी के साथ ऐसा कुछ किया जाए, खासकर कि लेडी एमपी के साथ ऐसा किया जाए। क्यों? क्योंकि दो सभ्य समाज नहीं आज, लेकिन स्टिल आप देखिए कुछ थोड़ी बहुत भी सभ्यता बची है, उस सभ्यता में भी नारी का सम्मान किया जाता है, लेकिन वहां पे असत्य सभ्या, ये सबसे बड़ा एक इनके ऊपर वो था, चोट थी एक्चुअली, क्योंकि कुंती महारानी की दिशा वॉज द डॉटर इन लॉ, कौन, द्रौपदी, असत्य सभ्या वनवास कृच्छ्रत, उसके बाद उनको वनवास में 12 साल और 1 साल फिर अज्ञातवास, 13 साल का पूरा वनवास उन्होंने झेला, वनवास इतना आसान नहीं होता है। असत्य सभ्या वनवास कृच्छ्रत मृदे अनेक महारथास्त्र, तो कि वहाँ पे जो युद्ध हुआ ना कोई छोटे मोटे लोग लड़ाई नहीं किए थे, महारथीज लड़ाई किए थे, और महारथीज मतलब 1-to-1 बैटल होता था। आज की बैटल की तरह नहीं कि कहीं छुप छुप के बंकर में गोली चला रहे हैं या कहीं दूर से तोपें से फाइट कर रहे हैं या प्लेन्स उड़ के आ रही हैं, बेसिकली कावर्ड फाइटिंग, कावर्ड फाइटिंग 1-to-1, जो राजा है सामने सामने उसका युद्ध होता था अपने प्रतिद्वंदियों के साथ, और ये नहीं कि एक राजा है वो सैनिकों से लड़ रहा है, एक महारथी अगले महारथी से युद्ध करता था। तो मृदे अनेक महारथास्त्र, तो बहुत बड़े बड़े महारथी लड़ाई किए थे उस युद्ध में। द्रोण चाश्मा हरे अभिरक्षिता, चाश्म अस्त्रतास हरे अभिरक्षिता, कि जो फाइनली जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा, उन्होंने फाइनली लास्ट में अपना चलाया था अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र चला के जो गर्भ में परीक्षित थे उनकी हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय भी क्या था, इन्होंने क्या किया था, प्रोटेक्शन किसने, भगवान ने, हरे अभिरक्षिता, भगवान ने प्रोटेक्शन दी थी। इसके बाद कुंदिमानी कहती विदर्शन तत्र जगत गुरु, तो बेसिकली अगर आप ध्यान दें कि भाव प्रभाव, इस भाव प्रभाव को भी नहीं देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम अपने जीवन के दुखों को जरूर देखना चाहिए, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक क्लेशों को, क्योंकि उसको देखने के बाद ही पदाम्बुजम, भगवान के उस चरणों को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी। इसी चीज को कुंती महारानी इसी वर्ष में कहते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्षणाशः, क्या हाउ टू गेट द शेल्टर, शेल्टर लेने का क्या तरीका होता है, कैसे भगवान की चरण कमलों की शेल्टर ली जाए, शृण्वन्ति श्रवण करके, भगवान की महिमा को श्रवण करते हैं, गायन्ति उनके बारे में गायन करके, स्मरण्ति उनके बारे में स्मरण करके, नंदन्ति, वन मोर थम्स, नंदन्ति नंदन्ति का अर्थ है कि दूसरों को भक्ति प्रगति करते हुए देख के भी खुश अगर आप होते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है कि इट प्लीजेस द लॉर्ड, भगवान को पसंद करता है। और फिर कहते तब अचीरेण तावकम, अचीरेण एक वर्ड आता है कि आप उस भगवान को बहुत तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, यथाशीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान को प्राप्त करना, जैसे कि आप देखेंगे कि राजा सत्यव्रत जो प्राप्त कर रहे हैं भगवान को, काफी सालों की तपस्या के बाद प्राप्त कर रहे हैं, कितने कितने युगों में भगवान को प्राप्त करने के लिए कितने कितने लोगों ने कितने कितने साल तपस्या की है। लेकिन ये थ्री प्रोसेस, श्रवंती गायंती स्मरणती, इन तीन बेसिकली प्रोसेस को फॉलो करके आप भगवान को अच्छे रहना बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। इसी चीज को एम्फसाइज करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने पूरे मूवमेंट को एस्टैब्लिश किया, श्रवंती गायंती स्मरणती। उसके एक एस्पेक्ट को मैं टच करूंगा, श्रील प्रभुपाद जी ने खास करके इस ग्रंथों की रचना करने के लिए बहुत बहुत एक्चुअली मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। वैसे तो कई स्टोरीज आपने सुनी होंगी जिसमें कि बताते हैं कि भगवान स्वयं प्रभुपाद को बोलते थे और प्रभुपाद लिखते थे, तो ये तो कई बार लगता है कि इट्स टू ट्रांसेंडेंटल हमारे लिए, डाउन टू अर्थ क्या है ये। लेकिन अगर डाउन टू अर्थ देखें, एक ऑथर कोई किताब लिखता है तो कितने ध्यान से उसने उस किताब को लिखा है, वो कुछ प्रभुपाद जी कैसे पास्ट टाइम से मेंशन होता है। खास करके अगर अष्टम स्कंद आप देखें तो अष्टम स्कंद की शुरुआत और इसका जो अंत है, इन दोनों के एंड और बिगिनिंग में प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज श्री भक्ति साईं ठाकुर को एक प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्चुअली उनकी ही कृपा से भागवतम पूरी हो पा रही है, मेरे अंदर तो कोई योग्यता नहीं इसको भागवतम को पूरी करने की। और 1 सितंबर 1976 राधा अष्टमी के दिन श्री प्रभुपाद जी ने इस अष्टम स्कंद का ट्रांसलेशन खत्म किया था। और अगर आप उस समय जो प्रभुपाद के जो पर्सनल सर्वेंट थे हरीशरी प्रभु, उन्होंने एक बुक लिखी है ट्रांसलेंडल डायरी के नाम से, उसको अगर आप पढ़े तो उसमें मेंशन कर रहे हैं कि जब प्रभुपाद ने अष्टम स्कंद शुरू किया था तो ये कुछ शुरू किया था मई के आसपास, आप सोचिए मई के आसपास शुरू किया था। और नॉर्मली प्रभुपाद जो ट्रांसलेशन करते थे वो कुछ 40-50 के आसपास, वो कोई यूनिट होती है डिक्टाफोन में, उस यूनिट तक करते थे, 40-50 यूनिट्स तक। लेकिन जब उन्होंने अष्टम स्कंद शुरू किया तो बता रहे थे प्रभुपाद रात रात जो नॉर्मल शेड्यूल होता था वो तो करते ही थे, बट एक्स्ट्रा टाइम दिया करते थे इन बुक्स को ट्रांसलेट करने के लिए। और उस समय प्रभुपाद ट्रांसलेट करते थे अराउंड 250-300 पॉइंट्स तक, इतने विग्रेसली कर रहे थे। प्रभुपाद को पता था एनी टाइम द लाइफ कैन एंड, जितना मैं भागवतम दे सकूं भक्तों को उतना मैं प्रयास करता हूं देने का। ये तो है एंडेवर्स का। दूसरा प्रभुपाद का था, प्रभुपाद की जो अटेंटिवनेस थी, जिस अटेंटिवनेस के साथ प्रभुपाद को ट्रांसलेट किया करते थे ना, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रभुपाद सबसे पहले मॉर्निंग आवर्स को चुने थे क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में सबसे लेस डिस्टर्बेंस होती थी। तो मॉर्निंग में 1:30-2 के आसपास प्रभुपाद उठते थे और फिर सुबह का टाइम जब पूरा मंदिर शांत होता है उस टाइम पे इनको ट्रांसलेट करते थे, ट्रांसलेशन उस टाइम पे दिया करते थे। उसमें एक पास टाइम आता है वृंदावन का, प्रभुपाद एक दिन ट्रांसलेट कर रहे थे, ट्रांसलेट करते करते हरीशौरी प्रभु को उन्होंने उठाया और बोला कि बहुत आवाज़ आ रही है, इस आवाज़ को बंद करो क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ इस आवाज़ से। तो हरीशौरी प्रभु ने थोड़ा डिटेक्ट करने की कोशिश की कौन सी आवाज़ है, तो पहले जो ब्रह्मचारी सोता था कराटे मार के उसको ही बाहर कर दिया, तो है नहीं, वो भी चला गया यहाँ से। उसके बाद बाहर कुत्ते भी नहीं भौंक रहे हैं। फिर लेकिन तब भी उन्होंने प्रभुपाद ने बोला तो अपने प्रभुपाद के रूम से बाहर निकले और पूरा सर्च किया आवाज़ आ कहाँ से रही, उनको सुनाई नहीं दे रही थी कोई आवाज़। तो फिर वापस आए उन्होंने प्रभुपाद से कि प्रभुपाद आई कांट हियर एनी वॉइस, प्रभुपाद ने बोला हियर अटेंटिवली यू कैन हियर इट, तो उनको सुनाई आवाज़ कहाँ दे रही। फिर थोड़ा सा ध्यान लगाया उन्होंने, फिर उन्होंने देखा कोई बहुत ना किसी पंखे की जैसे बियरिंग खराब हो जाती है और जैसे चूँ 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 आवाज़ करता है वैसी कोई आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने देखा कहाँ कहाँ से रही समझ नहीं आ रही, लेकिन बहुत मंद आवाज़ है, बहुत ही फेंट वॉइस। तो धीरे 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 उन्होंने देखा अपने कमरे में, देखा कमरे में कहीं नहीं आ रही। फिर धीरे बाहर निकले तो आवाज़ थोड़ी कम हो गई। फिर थोड़ा सा गेस्ट हाउस से कहीं आवाज़ आ रही, वो सीढ़ी चढ़ने लगे तो फिर देखे कि जो फेंट वॉइस है धीरे धीरे क्या हो रही है, लाउड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हरीशौरी प्रभु चौथे माले पे पहुँचे और वहाँ पे जब पहुँचे तो वॉइस और स्ट्रांग हो गई। और फिर अंदर कमरे में गए तो वहाँ पे एक भक्त सोए हुए थे, ऊपर का पंखा खराब था, पंखे की बेयरिंग खराब थी, उससे वो आवाज़ें आ रही थी और वो आवाज़ चौथे माले से प्रभुपाद ग्राउंड फ्लोर पे उनको वो सुनाई दे रही थी, वेरी फॉइंट वॉइस, ऐसा नहीं कोई डिस्टर्बेंस होगा उस वॉइस से, लेकिन बहुत बहुत डिस्टर्बेंस प्रभुपाद के लिए वो क्रिएट कर रहे थे क्योंकि प्रभुपाद यूजली वॉन्टेड दिस वेरी साइलेंट एटमोसफियर जहाँ वो श्रीमद भागवतम को ट्रांसलेट कर सकें। तो ये हम देखते हैं अपने आचार्यों की लाइफ से कि आचार्यों ने कितना संघर्ष किया है इन ग्रंथों को लिखने के लिए। भगवान खुद संघर्ष कर रहे हैं इन ग्रंथों को बचाने के लिए, भगवान खुद संघर्ष कर रहे हैं इन ग्रंथों को बचाने के लिए। भगवान को साक्षात एक मत्स्य का अवतार लेना पड़ा पहले मनवंतर में, हाँ खाली वेद को बचाने के लिए, खाली वेद बचाने के लिए, क्योंकि ये नॉलेज जो है भव सागर को पार कराने वाली है। इसी ऐसी ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस कर रहे हैं राजा सत्यव्रत अपनी इन प्रार्थनाओं में, और भी आगे दो तीन प्रार्थनाएं आएंगी, और अपना आभार प्रकट कर रहे हैं भगवान के लिए कि भगवान आप हमारे समीप हैं, हमारे समक्ष हैं, और आपके समक्ष होने के कारण, समीप होने के कारण हम इस अज्ञानता के सागर से निकल सकते हैं, क्योंकि जो ज्ञान आप दे रहे हैं ना वो क्या है, अज्ञान का नेचर ज्ञान का नेचर क्या है, अव्ययम, विनिश्च न किया जा सके, ज्ञान विनिश्च नहीं हो सकता, इटर्नल नॉलेज है, और इटर्नल नॉलेज में क्या करेगा अल्टीमेटली एट द एंड, त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन, इस जन्म में अपना शरीर त्यागने के बाद हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, और भगवान के धाम को प्राप्त करने के बाद क्या करेंगे, वहां पे प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान के साथ खेलना तथा नाचना, यही एक जीवात्मा का वास्तविक वो है, एक्चुअली एक इच्छा है, एक डिजायर है टू डांस एंड चैंट विद कृष्णा, और एक अल्टीमेटली अपने आप को एक आनंद के सागर में डुबाए रखना। तो ये श्रीमद् भागवतम से आज जो मैं समझ पाया वो आपको बता पाया, तो पूरा आपका कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो आप बता सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रवीण, धन्यवाद। अच्छा, मेरे तीन प्रश्न थे, छोटे छोटे पूछना चाह रहा था। पहला, जैसे आपने जो पास्ट टाइम बताया था कि एक टॉयलेट को सजाने का क्या आवश्यकता है, तो कहीं पे ऐसे डिस्कशन हो रही थी कि जो इस्कॉन का जो फर्स्ट पर्पस है, जिसमें प्रॉपर लिखते हैं सिस्टमेटिकली प्रोपोगेट स्पिरिचुअल नॉलेज, और फिर एंड में लिखते हैं इन ऑर्डर टू चेक द इम्बैलेंस ऑफ वैल्यूज इन लाइफ एंड टू अचीव रियल यूनिटी एंड पीस इन द वर्ल्ड, कि प्रभुपाद जो मिशन है इस्कॉन का कि इस वर्ल्ड में भी इन वन सेंस इंटरेस्टेड है कि किस प्रकार से पीस और यूनिटी इस्टेब्लिश की जा सके, तो बट एक दूसरा अपोजिंग मिलता है कि कहीं ऐसे पास्ट टाइम्स भी सुनते हैं प्रभुपाद के कि
प्रभुपाद जी ने जो रेफरेंस दिया था यहाँ पे खास करके पीस प्रॉस्पेरिटी कुछ टेम्पररी ग्राउंड्स पे बनाना वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। जैसे आप हिस्ट्री में भी देखें, विश्व में इतने युद्ध हो चुके हैं, विश्व युद्ध एक हो गया, दूसरा हो गया, तो पहले लीग ऑफ नेशंस बनाया था, उसके बाद यूएन बनाया, यूएन बनने के बाद इतने युद्ध हो चुके हैं, तो बेसिकली भौतिक सर्कल में भी इस पीस एंड प्रॉस्पर्टी के लिए स्ट्राइव तो कर रहे हैं लोग, दे आर स्ट्राइविंग फॉर इट, बट जो ग्राउंड है दैट ग्राउंड इज वेरी टेम्पररी, वेरी शेकी। यू आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड विदाउट हैविंग अ कॉमन फादर, सो पॉइंट इज की वन शुड हैव अ कॉमन फादर। तो प्रभा जी भी इस चीज़ का एम्फसाइज जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है, उनका वे क्या है, व्हाट इज द वे, वे इज निजम पदम, भगवान के चरणों की शेल्टर लिए बिना एक विकृत रूप से पीस प्रॉस्पेरिटी समाज बनाना संभव नहीं है।
ऐसा नहीं है कि भक्त जो है कि बस सब कुछ छोड़ के भागना चाहता है भगवत धाम और उसको इस वर्ल्ड से कुछ लेना देना
नहीं, अगर भागना होता तो फिर प्रचार नहीं करते भक्त, प्रचार का लक्ष्य ही है कि बेसिकली लोगों को भगवान से जोड़ना और फिर पीस प्रॉस्पेरिटी एस्टैब्लिश करना।
और मैं दूसरा प्रश्न था, जैसे जो भागवतम स्पीकर्स होते हैं तो जो इस्कॉन से बाहर या गौड़ीय वैष्णविज्म परंपरा के बाहर कोई प्रमाणिक गुरु होते हैं जो भागवतम पे कथा करते हो?
इसमें आप देखिए बेसिकली चार वैष्णव बोनाफाइड संप्रदाय होते हैं, श्री कुमारी आप चार संप्रदाय पता ही होगा जी आपको, और ये चार ही बोनाफाइड बताए गए हैं, अदरवाइज इसके अलावा जितने भी एक्चुअली प्रोफेशनल रिसाइटर्स, एग्जैक्ट पॉइंट या प्रोफेशनल रिसाइटर्स जो धन लेके भागवत का इस्तेमाल करते हैं, इसमें भक्तिनाथ ठाकुर भी कहा करते थे इससे ज़्यादा सम्मानजनक कार्य है कि आप सड़क पर झाड़ू लगाएं, तो भागवतम का इस्तेमाल करके आप धन अर्जन करते हैं, तो भागवतम का इस्तेमाल करके धन अर्जन करना वो खंडित किया गया है, वो बेसिकली विधर्म में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे और संप्रदाय नहीं है जो भागवत पर कथा नहीं करते, नहीं उनको अधिकार नहीं है, दे आर स्पीकिंग, ऐसे आपको फोर बोनाफाइड संप्रदाय हैं वैष्णव संप्रदाय, और हमारे समुदाय में भी देखेंगे आप तो भागवत सप्ताह करते हैं, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, तो बट दे डोंट डू इट फॉर अर्निंग मनी, पॉइंट इज दे यूज इट फॉर अर्निंग मनी, दैट इज फॉल्स। धर्म का इस्तेमाल धर्म के अगेंस्ट, विधर्म धर्म के अगेंस्ट ही कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, तो वो गलत है प्रोफेशनल रिसाइटर्स।
तो अगर कोई भागवतम कर रहा है तो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है, लीगल सोर्स ऑफ इनकम?
लीगल सोर्स ऑफ शुड बी डिपेंडेंट ऑन चैरिटी, एग्जैक्टली जो चैरिटी मिल गया दैट्स इट, इट्स माय अंडरस्टैंडिंग, व्हाटएवर इज इन चैरिटी। He should not put up his rate, अपनी रेट नहीं लगा सकते, कहीं आप देखेंगे कई भागवत प्रचारक होते हैं उनके स्टैंडर्ड रेट्स होते हैं, अगर आपको उनकी भागवत सत्ता करानी है तो उनसे आपको अपॉइंटमेंट लेके उनका रेट फिक्स होगा 3 लाख 4 लाख 5 लाख, तब वो एक हफ्ते के लिए आएंगे आपके यहाँ भागवत सप्ताह करने अपने पूरे टीम के साथ। सो आई थिंक इट्स ऑल बेस्ड मोर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चैरिटी एंड मेनी अदर सीनियर डिवोटीज कैन टेल ऑन दिस, इट्स माय अंडरस्टैंडिंग।
आखिरी प्रश्न था कि जैसे कोई और ऑर्गेनाइजेशन के हैं बट हमें पता है कि वो बोनाफाइड नहीं है या उनकी फिलॉसफी एक अलग अलग रूप से है, तो अगर वो कभी हमें इनवाइट करने आते हैं या कभी हमें मिलते हैं तो हमारा किस प्रकार से डीलिंग होना चाहिए उनके साथ, कुछ ऐसे गाइडलाइंस या कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स?
हाँ, एक्चुअली इसको भी देखेंगे आप, तो कल सचिपति प्रभु भी एक लेक्चर में अपने टॉप पॉइंट में बता रहे थे पॉइंट की दूसरों की भावनाओं का एक सम्मान करते हुए उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचाएं एटलीस्ट, लेकिन भावनाओं को ठेस पहुँचाने का ये अर्थ नहीं कि हम उनकी सारी बातों को मानेंगे, तो ये कि ठीक है हम उनकी भावनाओं को रिस्पेक्ट करते हैं उनकी जो भी भावना है, स्टिल वी डोंट फॉलो व्हाट देयर प्रिंसिपल्स आर। जब भी हम उनसे मिलते हैं या कुछ करते हैं ठीक है, एक अच्छे व्यक्ति की तरह उनसे बात कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, बट वी डोंट फॉलो व्हाट दे से और व्हाट एवर दे आर सेइंग, व्हाट देयर फिलॉसफीज, ये चीज। अच्छा, इसका मीनिंग प्रलय पे होती जले, बेसिकली ये जो अभी वर्ड्स गाया था तो इसका मीनिंग यही था कि जो प्रलय के समय जो पूरा का पूरा संसार में डिवास्टेशन हुआ था उसके जल के कारण क्या हुआ था कि वेद जो थे वो डूबने लगे थे, तो भगवान को मीन अवतार लेना पड़ा था, मीन शरीर उन वेदों की रक्षा करने के लिए, तो बेहतर बेहतर चरित्र मक्के थे, भगवान ने उसको प्रोटेक्ट किया था बेसिकली वेदों को। तो ये जयदेव गोस्वामी की दशावतार स्तोत्र उसमें से एक पहला वर्ड था ये, तो उसको खाली हमने सिंग किया था क्योंकि रेफरेंस मत्स्य अवतार का था। प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, नित्याय गौर प्रेमानंद।